You're listening to your local Asian community radio station.
Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon. Namaskar, sasrikar, pakhaira. I am your host, Dr. Mohibul Haq, here on Radio Sangam with my usual weekly program called The Contribution of Micro Businesses. But we begin by praising Allah subhanahu wa ta'ala for all that He has given us, to every human being and to our creations that He has created, and sending salutations to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. My dear listeners, I am joining you today after a break, and that break was originally because of Ramadan, and after Ramadan I had some other commitments, so I missed 2 weeks. So this is my first week after Ramadan started that I started my program called The Contribution of Micro Businesses. Aapko saath saath ye bhi batata chalun ke mere do bahut acche dost hain. Ek ka naam Fahim Shah hai jo ke Bombay store mein kaam karta manager hai, aur ek aur bhi mera acha dost hai Wakil Khan. To unhone aaj khaaskar mujhe kaha ke aap English mein baat karte ho, to mujhe kehte hai ki aapki English bhi tooti phooti hai aur upar se sirf English sunne ka itna maza nahi aata hai jitna Urdu sunne ka bhi aata hai. Wo dono English bolte hain mashallah, farfar fatafat टका टका कर इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इंग्लिश बोलो ठीक है, लेकिन दरमियान में उर्दू भी थोड़ा सा मिक्स करो, क्योंकि उर्दू का अपना एक मज़ा है. उर्दू ज़ुबान बहुत मीठी है और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किए जा सकते हैं, लिहाजा अगर ट्रांसलेट करते हैं उनकी अथेंटिक मीनिंग चेंज होती है या डिस्टॉर्ट हो जाती है. तो चलो इस बहाने से आज मैंने सोचा है कि मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों मिक्स करूंगा अपने प्रोग्राम में. एनीवे, आई वर्क एज ए सीनियर लेक्चरर इन एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रेटजी एंड सस्टेनेबिलिटी इन हडर्सफील्ड बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड, बट आई एम फ्रॉम ब्राडफोर्ड, आई लिव इन ब्राडफोर्ड. सो इफ यू वांट टू गेट इन टच विद अस टुडे, आवर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर फॉर संगम रेडियो इज 07444202155. अगर जस्ट इन केस आपके पास मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर अगर है तो मैं आज वो भी सुनूंगा. आप मुझे कॉल भी कर सकते हो तो मैं आपकी कॉल भी सुनाऊंगा, और आपका जो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन भी ले लूंगा. और हम हमारा रेडियो संगम का जो स्टूडियो हॉटलाइन नंबर है वो 01484817705. मैं आपको ये भी सजेस्ट करता चलूं, the best way to listen to Radio Sangam in case you are busy right now is basically to download the app. आप download करें, आपको आपका जो download करना free है, और अगर आपके पास data होगा जो कि आजकल तकरीबन हर एक के पास होता है, या आप घर में ऑफिस में कहीं लैपटॉप पर हैं, कंप्यूटर पर हैं, या कहीं भी मोबाइल फोन पर हैं, आपके पास data है तो आप live सुन भी सकते हैं, और अगर live नहीं सुन सकते हैं, सुनना चाहते हैं तो लेटर ऑन आपके अंदर जाकर लिसन अगेन मैं क्लिक करें, और वहां पर आपको एक प्रोग्राम नजर आएगा द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो बिजनेसेस. आप इस तरह से भी माइक्रो बिजनेस का प्रोग्राम जो आज का प्रोग्राम है या आइंदा जो एवरी वेनसडे जो प्रोग्राम होगा वो सुन सकते हैं. हमारा टॉपिक क्या है आज? आज मैं जानबूझकर मैंने किसी गेस्ट को बुलाया नहीं है, मैंने सोचा आज अपना खुद ही गेस्ट बन जाता हूं और कुछ इम्पॉर्टेंट नॉलेज मैं शेयर करूंगा आज आप लिसनर के साथ. खासकर आप अगर बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन हैं, या अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में स्टूडेंट हैं, बिजनेस ओरिएंटेड आपका माइंड है, या इवन आप किसी के लिए काम करते हैं एज एम्प्लॉई राइट नाउ और आप चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन will prove to be very useful for any kind of activity that you are doing or you want to do. मैंने और कुछ मेरे colleagues हैं جو کہ ایک پروفیسر فرانس میں ہے ایک پروفیسر نیوزی لینڈ میں ہے اور ایک پروفیسر لندن میں ہے اور ایک میرا کور کولیگ میرے ساتھ ہڈرسفیلڈ یونیورسٹی میں کام کرتا ہے تو اس طرح ہم نے کچھ ریسرچ پبلش کی تھی لاسٹ ایئر 2023 میں ہم نے کیا سوچا کہ ہم نے کیا فیل کیا تھا کہ کیونکہ میں خود ایتھنک مینارٹی سے بلانگ کرتا ہوں اس کنٹری میں آئی ایم فرام دا ہملیاز ہند کش اینڈ کراکرم رینج گلگت بلتستان سو آئی ایم بیسیکلی فرام گلگت ایریا دا بگ ماؤنٹینس لائک دا سیکنڈ لارجسٹ ماؤنٹین ان دا ورلڈ کیٹو وہ میرے ایریا میں ہے سکردو میں ہے سکردو گلگت سے کوئی تقریباً پانچ چھ گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے تو میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں تو اس لیے سینس بھی بنتا ہے کہ میں اس کمیونٹی کے بارے میں ٹاک کروں اور اس کمیونٹی کی جو گڈ کنٹریبیوشنز ہیں اس کو ہائی لائٹ کروں اس کو مین اسٹریم ڈسکشن میں لے آؤں میرا اس میں کوئی ذاتی فائنینشیل انٹرسٹ ہے سچ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی بہت حیثیت دی ہے میں اس کا ڈیزرو نہیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے تو میرا بھی کام بنتا ہے تو اپنی کمیونٹی کو کچھ کنٹریبیوٹ کروں ہماری ریسرچ یہ تھی کہ ہم نے یہ ریسرچ کیا تھا کہ جو ہیومن کیپیٹل ہے وہ کیسے جنریٹ ہوتا ہے یا کیسے جنریٹ کرتے ہیں مائکرو بزنس اسمال بزنسز میں اور اس ہیومن کیپیٹل کا رول کیا ہے کسی بھی بزنس کو کامیاب کرنے کے لیے سکسیس کرنے کے لیے آپ ابھی سم آف یو مائٹ آسک می وٹ ڈز ہیومن کیپیٹل مین ان دا فسٹ پلیس تو میں اس کو بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کروں گا ہوپ فلی کچھ لوگوں کو سمجھ آئے گی اور اگر آپ جیسے میں نے پہلے کہا اگر آپ رنگ کرنا چاہتے ہیں ریڈیو سنگم کے اسٹوڈیو ہارڈ لائن پہ بھی رنگ کر سکتے ہیں اگر ان کیس آپ میرے فرینڈ ہیں پہلے سے ہمارا کوئی تعلق رہا ہے آپ کے پاس میرا موبائل نمبر ہے تو آپ ڈائریکٹ رنگ بھی کر سکتے ہیں رائٹ آفٹر ٹائم آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ اگر آپ ایتھنک مائنارٹی ہیں اس کنٹری میں فار ایگزامپل آپ انڈیا سے آئے ہیں بنگلہ دیش سے آئے ہیں شری لنکا سے آئے ہیں افغانستان سے آئے ہیں نیپال سے آئے ہیں پاکستان سے آئے ہیں یا ایون افریقن کسی کنٹری سے آئے ہیں ایجپٹ سے فار ایگزامپل اگر آپ آئے ہیں یا آپ نائجیریا سے آئے ہیں یا آپ کسی اور افریقن کنٹری سے یا ایون کریبین کنٹری سے آئے ہیں ایون ایسٹرن یورپین کنٹری سے لوگ آئے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ یو کے اندر جب وہ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس ریلیونٹ نہیں دس از واٹ وی کال ہیومن کیپیٹل ہیومن کیپیٹل از اکامولیٹڈ آر ڈیولپڈ تھرو ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن اگین اٹ کین بی فارمل ایجوکیشن آپ کالج جاتے ہیں اسکول جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں وہاں سے ایک ایجوکیشن لیتے ہیں یا ایون اٹ کین بی انفارمل ایجوکیشن آپ کسی اپنے بڑے سے سیکھتے ہیں کسی ایسی جگہ میں کوئی ٹیکنیکل کام کوئی ترخوان ہے یا کوئی پلمبر ہے یا کوئی جوائنر ہے یا کوئی سوئنگ مشین کے بارے میں ہے تو آپ ٹیکنیکل نالج بغیر کالج یونیورسٹی یہ سیکھتے ہیں تو آپ کا پھر ایکسپیرینس ہوتا ہے اس خاص کر ایک پارٹیکولر کانٹیکسٹ میں کام کرنے کا تو یہ سارا ملا کر ہم اس کو کہتے ہیں ہیومن کیپیٹل This is an intangible type of resource that individuals have and that can play a very important role for individual success as well as organizational success as well as a country success overall, a national success. تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یو کے اندر آپ فرض کرو آپ نے کوئی ایم بی اے کی ڈگری لے کر آئے انڈیا سے بنگلہ دیش سے چائنا سے نائجیریا سے یا کسی اور کنٹری سے تو یہاں پر یہ ایسا ہوتا ہے اکثر میں نے بھی دیکھا ہے تو کہتے ہیں امپلائر سے آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ ہمارے کانٹیکسٹ کے حساب سے ریلیونٹ نہیں تو ان کی بات بھی غلط نہیں ہے کیونکہ ہمارا کانٹیکسٹ اور ہوتا ہے یہاں کا انوائرمنٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ہیومن کیپیٹل تو ہم اس پیپر میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس ہیومن کیپیٹل کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کا رول کیا ہے کسی انڈیویجول کو یا کسی آرگنائزیشن کو کامیاب کرنے کا تو اس پیپر میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں بائی دا وے دا پیپر دا ٹائٹل آف دا پیپر از کالڈ بورڈیزین اینڈ ریسورس بیسڈ پرسپیکٹیوز آن ایتھنک مائنارٹی مائکرو بزنسز دا کنسٹرکشن آف کلچر انڈیوسڈ انٹرپرینیورشپ ماڈل تو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ थ्योरी से एकेडमिक्स हैं, जो लोग एकेडमिक्स हैं जो थ्योरी से वाकिफ हैं, तो वो उनको समझ आई होगी कि बोर्डियो एक फ्रेंच फिलासफर गुजरा है रीसेंट हिस्ट्री में, और एक और कंसेप्ट है बिजनेस लिटरेचर में रिसोर्स बेस्ड व्यू. तो हमने उन दोनों को कंबाइन किया और उसको अप्लाई किया एथनिक माइनॉरिटी माइक्रो बिजनेसेस इन्वेस्ट यॉर्कशायर. तो फिर हमने एक और मॉडल डेवलप किया, तो हमने कहा कि कल्चर इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल. तो एक ऐसा मॉडल हमने डेवलप किया कि यो के इन्फॉर्म्ड दैट मॉडल इज इन्फॉर्म्ड बाय आर दैट मॉडल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एथनिक माइनॉरिटी दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम subcontinent, Indian subcontinent, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Nepal, and Afghanistan. तो हमने जो literature read किया उससे हमें ये भी मालूम हुआ कि आप अगर किसी foreign country में आते हैं, जैसे कि many of you like me, many of you have ended up. Their parents, their grandparents, or even yourself as a first generation immigrant in this country, for example, in the UK. So you might have experienced these two concepts are called the liability of smallness and the liability of foreignness. So liability ko abhi in English ka word hai, isko Urdu mein tarjuma karenge. To mujhe nahi pata exactly kis tarah tarjuma karna chahiye, lekin सिंपल अल्फाज में ये सोचें कि ये एक तरह का एक बोझ है छोटे होने का एज ए स्मॉल बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट. स्मॉल बिजनेस होने का एक बोझ है और किसी फॉरेन कंट्री में किसी गैर मुल्की कंट्री में होने का एक बोझ है जहां लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, यहां पर आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस को इतना वैल्यू नहीं किया जाता है. तो ये दोनों एक बोझ हैं. लाइक इसमें फिर डायलेमा यह है, आयरनी यह है कि जो साउथ एशियन एथनिक माइनॉरिटी के लोग हैं दे आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम दीज टू लाइबिलिटीज एट द सेम टाइम. अगर उन्होंने एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है यूके के अंदर तो दे आर वेरी स्मॉल, दे डोंट हैव रिसोर्सिस, दे डोंट हैव प्लानिंग, इवन दे डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग ए बिजनेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन दिस एनवायरमेंट इन द यूके. तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं स्मॉलनेस के साथ, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का उनके पास बजट नहीं होता है, उनके पास लोगों की कमी होती है, उनके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं, उनके पास एचआर डिपार्टमेंट नहीं, उनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नहीं है, सेल्स डिपार्टमेंट नहीं है, सप्लाई चेन, ये सारे सेपरेट डिपार्टमेंट्स नहीं है. वो एक आदमी ने काम स्टार्ट किया, शॉप स्टार्ट की, तो वो सारी चीज़ें खुद ही कर रहा है, या उसकी वाइफ उसका काम हेल्प कर रही होगी, या अगर वाइफ ने स्टार्ट किया है हस्बैंड हेल्प करेगा या रिश्तेदार करेंगे इनफॉर्मल बेसिस पे. ये तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी है. और जो सेकंड लाइबिलिटी आती है वो है फॉरेननेस, जो कि पहले ही मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है आपको कि फॉरेननेस होने की वजह से एक तो आप कल्चर से वाकिफ नहीं हैं, दूसरी बात कैसे करनी है, अगले इंसान के साथ कोई ऐसी बात ना करे कि वो ऑफेंडेड हो जाए, या फिर ये है कि इन द फर्स्ट प्लेस लैंग्वेज बैरियर इटसेल्फ एक बैरियर है, जगह का नहीं पता होता है. तो ये दोनों लाइबिलिटीज अमूमन स्मॉल बिजनेस को फेस करनी पड़ती है, वन ऑफ द अदर मे बी, बट इन टर्म्स ऑफ आवर कम्युनिटी साउथ एशियन एथनिक माइनॉरिटी एंड मे बी ट्रू फॉर एफ्रो अफ्रीकन और कैरेबियन और मे बी चाइनीज और मे बी सम अदर एथनिक माइनॉरिटी इन एन एथनिक मेजॉरिटी कंट्री like the UK. So these people face these two liabilities at the same time. So idea ye hai ke ye aise businesses logic ye kehti hai ke aise businesses ko difficult hogi wo kamyab nahi ho sakte hain, lekin asal mein aisa hai nahi. Hamara argument ye hai ke even if ethnic minority businesses face dual liability of smallness and foreignness, but still many of them manage to be successful entrepreneurs and successful micro businesses in our area in West Yorkshire, kyunki jahan par humne research ki thi aur humne 43 logon ko interview kiya tha jisme zyada aadmi the, kuch auratein bhi thi, kuch aged log bhi the, और कुछ यंग जनरेशन यंग लोग भी थे फॉर एग्जांपल 25 30 ईयर ओल्ड कुछ ऐसे भी लोग थे 60 ईयर ओल्ड लोग भी थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि इस कंट्री में पैदा हुए हैं सेकंड और थर्ड जनरेशन इमिग्रेंट्स थे और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो इंडिया और पाकिस्तान से इधर आए थे शादी करके आए फॉर एग्जांपल और ऐसे लोग भी थे कि जो अफ्रीकन कंट्री से आपको याद हो कि 1960s और 70s में से युगांडा और नैरोबी इन एरिया से जो साउथ एशियन एथनिक माइनॉरिटी के लोग थे उनको निकाल दिया गया था डिफरेंट वजूहात की वजह से वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट तो कुछ ऐसे लोग भी थे तो इसलिए हमने ए गुड मिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल वी इंटरव्यूड एंड वी एनालाइज्ड दैट डेटा सो वी केम टू द कंक्लूजन दैट एथनिक माइनॉरिटी माइक्रो बिजनेसेस even if they face the dual liability of smallness and foreignness, but most of them, if not all, end up to be successful businesses or wo grow bhi karte hain. Even some research in the UK, not our research, of course, we read research of other people, they also suggested that it's actually ethnic minority entrepreneurs are more innovative and they are more growth oriented than ethnic majority micro businesses in other words kuch aur logon ne research ki hai jo ki humne unki research padhi aur apna article mein usse research cite kiya unko credit humne diya wo ye kehte hain ki ethnic minority micro businesses bahut sare aise ethnic minority micro businesses hain UK ke andar jinke andar zyada potential hai jo grow karne ka unke paas zyada chance hai بجائے کہ ایتھنک میجارٹی مائکرو بزنسز کے اور ان کی ریسرچ یہ بھی ہے اینڈ وی اگری ود دیم اور ریسرچ بیسیکلی انڈیکیٹس اور سجیسٹس سملر آرگومنٹس کہ دوسرا ان کا یہ ہے کہ جو ایتھنک مینارٹی مائکرو بزنسز ہیں وہ ایکچولی زیادہ انوویٹیو ہوتے ہیں تو ان کے اندر کوئی انوویٹیو ایکٹیویٹی کرنے کا کوئی چیز نئی چیز ایجاد کرنے کا یا نئی چیز بزنس کے اندر انٹروڈیوس کرنے کا ان کے اندر ٹرینڈ یا پوٹینشیل زیادہ ہوتا ہے بجائے کہ جو ایتھنک میجارٹی مائکرو بزنسز ہیں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ایتھنک مینارٹی جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تو اس ڈیفیکلٹی سے نکلنے کے لیے ان کو انوویٹیو ہونا پڑتا ہے پروکٹیو ہونا پڑتا ہے Dear listeners, I am your host, Dr. Mohibul Haq, a senior lecturer teaching entrepreneurship and strategy as well as sustainability in Huddersfield Business School, researching micro businesses. جب میں کمرشل سن رہا تھا تو آپ نے بھی شاید سنا ہوگا تو کمرشل تھا کہ انسان بہت محنت سے اپنا بزنس کھڑا کرتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرے میرے لیے یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ تھی کیونکہ ماں اٹ بیسیکلی فٹس ویل ہاف آف دس اسٹیٹمنٹ ایکچولی فٹس ویل ود مائی ریسرچ دا فسٹ ہاف از انسان بہت محنت سے اپنا بزنس کھڑا کرتا ہے کہ اے بزنس مین اور اے بزنس وومین ڈز اے لاٹ آف ہارڈ ورک ود کمٹمنٹ اینڈ پرسویرنس to establish a business and to maintain it to sustain its success that's true the second statement is then wo bahut sare logon ke sath connect karta hai to meri jo research hai abhi tak jo micro businesses south asian ethnic minority micro businesses west yorkshire mein khaskar usme actually aisa nahi hai ye log inke paas ek established small number of customer hote hain ye in customer ko focus karte hain aur ye اس بات کی کوشش نہیں کرتے ہیں I'm not saying all of them but most of them are not actually trying to expand their customer base rather they focus on a small number of customers ان customer کو satisfy کرتے ہیں ان customer کی needs کو پوری کرتے ہیں by providing ethnic oriented or ethnic specific products and services اور یہی actually long term میں ان کا success ہونے کا secret ہے this is the secret of their sustainable success over time. Anyway, coming back to our research, of Bordesian and the resource perspectives of ethnic minority micro businesses, the construction of culture induced entrepreneurship model. Main aapko remind karata chalun ki is research mein hamara focus ye tha ki we were trying to focus on and trying to explore how ethnic minority micro businesses create human capital resources. Jo ki pehle main explain kar chuka hu. Hopefully agar kisi ko question karna hai, you can still text me on our studio WhatsApp, or if you have my number directly, then you can ask, I will explain. Our second question was, and how these resources contribute to performance of businesses. Ek aur question jahan create hota hai, jahan arise hota hai, ki you might ask, what do you mean by performance? The way we defined performance is, in terms of ethnic minority micro businesses, our context or of our research is that performance is a particular situation in a business context where a business makes a profit or continues to grow or survives insofar as it does not accrue any cost. Simple words mein, Urdu mein, main aapko ye bataun ke humne jo performance hai usko define kiya apne article apne research mein, wo ye hai ki performance kisi bhi business ke andar ek aisi situation hai yahan par ya to wo business koi profit kama raha hai ya wo business grow ho raha hai, badh raha hai, physically badh raha hai, ek aur branch kholi, ya 10 log kaam karte hain to abhi 15 log kaam kar rahe hain, 2 years after 25 log kaam kar rahe hain, to is taraf employment ke hisab se grow kar raha hai, ya even wo survive bhi kar raha hai. Jaise COVID-19 aaya to bahut sare businesses profit nahi kama rahe the, expand bhi nahi ho rahe the, lekin wo successfully survived. And this successful survival in difficult times leads to expansion, growth, profitability in good days. To ye hamari definition thi. To hamari research ke hisab se phir humne kya actually found kiya ke jo ethnic minority micro businesses, South Asian ethnic minority micro businesses hain West Yorkshire ke andar, zyada tar logon ne hame ye bataya ki hamare data analysis ye kehti hai कि फॉर्मल एजुकेशन, जैसे यूनिवर्सिटी में जाओ, कॉलेज में जाओ, ये उनके बिजनेस के लिए इतनी मुफीद नहीं है जितनी कि उनकी इनफॉर्मल एजुकेशन है. फॉर एग्जांपल, इफ यू गो टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज एंड यू आर स्टडीइंग लेट्स से मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस और सप्लाई चेन, तो जो मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ज़्यादातर, इवन हमारी यूनिवर्सिटी में हम बीजेपी पढ़ाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस है बिजनेस विच नीड्स टू मेक अ प्रॉफिट. तो ये सारी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, दे आर एक्टिविटीज़ रिवॉल्व अराउंड प्रॉफिटेबिलिटी, मनी मेकिंग. लेकिन हमारे जो पार्टिसिपेंट है साउथ एशियन एथनिक माइनॉरिटी माइक्रो बिजनेसेस, वो ये कहते हैं कि यस, मनी मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट, but it is not the only important factor, or it's not the most important factor in making their business successful. Wo kya kehte hain ki unka kehna hai, unka manna hai ki jo sabse important factor hai wo customer satisfaction hai. Chahe for the time being aapko apna product even your cost price se usse bhi thoda sa kam par bechna hai, aapne customer ko satisfy karna hai. और अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया, उनका कहना यह है, तो वो कस्टमर एक बार आपके बिजनेस से सेटिस्फाइड हो गया तो उसकी लॉयल्टी डेवलप होगी, एंड दैट कस्टमर विल नेवर एवर गो एनीवेयर एल्स फॉर व्हाट एवर दे नीड. इफ योर बिजनेस कैन मीट देयर नीड्स, दे विल कम टू योर बिजनेस. सिर्फ इतना नहीं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन विल आल्सो बी कस्टमर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस. And through positive word of mouth, family members, friends, and other people that they know, they will also end up being your customers. So in a nutshell, in purely economic terms, you might be earning less per unit sale, but overall, you might be selling on a large scale, like we call it economy of scale or economy of scope. तो दोनों चीजें इसमें फिट आती है. इकोनॉमी ऑफ स्केल ये है कि आपने large scale par bech diya ima economy of scope ye ki aapne different items kisi ek particular customer ko becha aur customer kahin aur jane ke bajaye uske different needs hai for example a customer hai haj pe gaya let's say to usko haj pe jane ke liye kapde chahiye to wo aapke paas aa gaya phir us customer ki family ke andar ya unki apni rishtedaron mein ya unke apne ghar ke andar koi shaadi hai shaadi biyah ki cheezein khareedni hai unka sherwani khareedni hai lehenga khareedna hai ya decoration ko koi stuff khareedna hai wo phir aapke paas aa gaya to hamare jo participants hai unka kehna ke ye hai ki we don't focus on profit maximization or sales maximization we always focus on customer satisfaction therefore formal education jo college ya university se milti hai wo hamare liye itni mufeed itni useful nahi hai jitni ke informal education jo ek family through practice pass on karti hai to the next generation ya in a business context a business entrepreneur father hai brother hai sister hai mother hai wo apna experience through practice through doing business wo apne bachon ko ya younger sibling ko ya family members ko pass on karte hain to wo kehte hain ki ye particular education informal education is more important for us than formal education so informal education is one type of human capital unka ye bhi kehna hai ki jo experience hai jaise pehle maine aapko bataya ki if you have experience from india or from pakistan let's say in selling a particular product and this particular experience might not be valued highly in the UK or as highly as experience gained from within the UK lekin ethnic minority micro business context mein ye experience even if it has been acquired from India or Pakistan or from Bangladesh or from any other Indian subcontinent country if somebody comes with that experience in the context of the UK or in West Yorkshire where we are located where I teach and where I do my research to hamare jo participants hai unka kehna hai ki ye experience highly useful hai for them therefore the local experience or context specific experience is considered an important part of their human capital exactly usi tarah knowledge hai अब नॉलेज जो टेक्निकली अगर आप डिफाइन करें तो वो एकेडमिकली वो ये है कि नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू ए फ्लो ऑफ मैसेजेस एंड इफ दिस फ्लो ऑफ मैसेजेस मैचेस विद बिलीफ सिस्टम्स आर प्रायर एक्सपीरियंसेस देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कैन बी कन्वर्टेड और इट कैन बी कंसीडर्ड टू बी नॉलेज इन अदर वर्ड्स जैसे कि हमारे perceptions hoti hai hamare khayalat hote hain hamara religion hai hamara culture hai uski base par hamara kuch experience hai kuch humne logon se suna hua hai apne badon se suna hai humne khud experience nahi kiya hai lekin jab hum koi aisi cheez experience karte hain jo ke match karta hai these experiences with whatever we heard we have been told by our elders already to usko kehte hain knowledge academically लेकिन ये हमारे जो पार्टिसिपेंट है साउथ एशियन एथनिक माइनॉरिटी माइक्रो बिजनेसेस इन वेस्ट यॉर्कशायर दे ऑफ कोर्स डिफाइन नॉलेज मोर प्रैग्मेटिकली बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रैक्टिस नॉट एकेडेमिया तो उनका कहना ये है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर एक्सपीरियंसेस और प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस मैच कर रहे हैं तो आप नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं वो कहते हैं कि नोइंग इफ यू नो समथिंग If you know your customer, if you know the product that you are selling, if you know a particular product, what a particular product can do for your customer, this is what they consider as a knowledge. Unka kehna ye hai ki ye jo type of knowledge hai, ye inke liye bahut important hai. Aur unne bahut saari misalein bhi di. For example, ek hamara participant tha, to usne ye kaha ki उनके पास दो कस्टमर आए फॉर एग्जांपल तो उन्होंने एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पूछा तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मल्टीपल नेम्स थे जैसे हमारी साउथ एशियन लैंग्वेज में उसका एक नेम है या टेक्सटाइल के हिसाब से उसका एक नेम है इंग्लिश लैंग्वेज में उसका एक और नेम है तो कस्टमर ने इंग्लिश लैंग्वेज का वो नाम पूछा तो वो दो मेंबर ऑफ स्टाफ थे तो उन्होंने कहा नहीं हम ये बेचते नहीं तो तीसरा मेंबर ऑफ स्टाफ था जो पहले से वहां काम करता था ये थोड़ा सा ज्यादा उसका एक्सपीरियंस था तो उसने कहा कि नहीं ये हम बेचते हैं इसका असल में नाम और है हम इसको डिफरेंट नाम से जानते हैं तो उन्होंने उसको प्रोडक्ट पेश किया तो वो कस्टमर ने कोई तकरीबन पता नहीं कोई 50 60 मीटर के हिसाब से वो प्रोडक्ट खरीदा और उसके बाद वो रेगुलर कस्टमर उसके बने तो दिस टाइप ऑफ नॉलेज व्हिच इज डराइव्ड फ्रॉम द कल्चर एंड टू सम एक्सटेंट from religion as well is highly valued in ethnic minority micro businesses at least in our context in West Yorkshire ab aap puchhenge ki main aapko culture aur religion ke bare mein discuss karta raha hu to culture kya hai asal mein culture jise आप में से काफी सारे लोग मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कल्चर इज अ सेट ऑफ वैल्यू सिस्टम्स वेयर बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी होल्ड्स दिस वैल्यू सिस्टम क्वाइट हाईली एंड प्रैक्टिसेस दिस वैल्यू सिस्टम इन देयर डेली लाइव्स जैसे एक पर्टिकुलर किसी भी चीज को हम एक पर्टिकुलर अंदाज से करते हैं तो वो कल्चर हमारा कल्चर सिस्टम में जैसे मैं एक मूवी देख रहा था इट्स आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवी एंड इट्स टाइटल इज समथिंग लाइक सोर्सिंग आउट एचआर के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हिसाब से एक मूवी है कि जो कि सोर्स आउट करते हैं अपनी एक्टिविटी को तो एक अमेरिकन मैनेजर इज बीइंग सेंट टू इंडिया टू ट्रेन कॉल सेंटर स्टाफ इन इंडिया तो आपको पता है ना कि बहुत सारे कॉल सेंटर यूके में हैं यूरोप में हैं अमेरिका खासकर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज तो वो इंडिया भेज दिए हैं तो इंडिया से वो ऑपरेट होते हैं तो दिस पर्सन गोज टू इंडिया एंड दिस इज क्वाइट हिलेरियस मूवी बट इट्स वेरी यूजफुल मूवी देयर लॉट ऑफ लेसंस टू बी लर्नड तो इसमें खासकर एक पर्टिकुलर आइडिया है कि उसको खाना पेश करते हैं मैं मिसाल आपको दे रहा हूं तो वो लेफ्ट हैंड से खाना खाता है तो वो औरत उसको मना करती है जिस घर में वो जाता है मेहमान बनकर तो वो अब उसको इंग्लिश नहीं आती है लेकिन उसको ये मना करती है कि साथ से मत खाओ तो उसको समझ नहीं आती है कि मैं मतलब साथ में क्या प्रॉब्लम है ये भी मेरा हाथ है राइट हैंड मेरा हाथ है लेफ्ट हैंड भी मेरा हाथ है पार्ट ऑफ माई बॉडी व्हाट्स रॉन्ग विद इट तो जो आदमी होता है बूढ़ा आदमी वो प्रैक्टिस करके बताता है कि वो हम लेफ्ट हैंड से गंदगी साफ करते हैं राइट हैंड से अच्छे काम करते हैं खाना खाते हैं लोगों को सलाम करते हैं हाथ मिलाते हैं तो वो भी सही तरह से समझा नहीं सकता है तो दिस इज़ बेसिकली आवर कल्चर तो एनीवे फिर जो आदमी उसको जो होस्ट है जो उसको ले गया घर उसको थोड़ी बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है तो वो फिर कहता है कि वी यूज़ लेफ्ट हैंड फॉर टू डू यू नो डर्टी थिंग्स सच एज क्लीनिंग आवर सेल्फ्स but right hand we use to eat something or to handshake blah 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 this is our value system this is a simple example it might not be a brilliant example but it's still an example to understand the value system culture kya cheez hai to iske andar zahir hai religion be ab this point can be actually a bit of disagreement there can be because some scholars some people say that culture is a bigger concept and religion is part of the culture. Others say, no, it's actually the other way around. Culture is not the big picture. Religion is the big picture and the culture is part of religion. I guess both arguments can be true depending on what context you are talking about. तो फॉर एग्जांपल मेरे कॉन्टेक्स्ट में मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह and practicing Muslim हूँ और कोशिश करता हूँ मैं और ज़्यादा practicing बनूँ अब इस्लाम के golden rules पर अमल करूँ क्योंकि इस्लाम यही हमें सिखाता है कि अच्छा इंसान बनो झूठ मत बोलो चोरी मत करो फ्रॉड मत करो ब्ला ब्ला और बुरी चीज़ें मत करो इंसानियत का काम आ जाओ मखलूकात का काम आ जाओ क्योंकि ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं बनाई है इस दुनिया में जानवरों का भी इतना हक है जितना हम इंसानों का है इसलिए हम जानवरों को भी बगैर ज़रूरत के फन के लिए मत मारें درختوں کو بغیر ضرورت کا نہ کاٹے ایون گراس کو نقصان نہ پہنچائے انسٹ کو نقصان نہ پہنچائے یہ سارا ہمیں اسلام سکھاتا ہے تو میں اسے آپ اگر پوچھیں گے تو پرسنلی میں تو کہوں گا کہ ریلیجن is the bigger picture and the culture is part of this religious belief system تو اس میں پھر ہماری جو ریسرچ ہے ہم نے جو ڈسکور کیا تھرو آور ڈیٹا انالیسس اس میں یہ ہے کہ Okay, culture is important and human capital developed through cultural practices or within a particular cultural context can play an important role for sustainability of the business success. But actually, culture itself is influenced by the religious belief system. Religion bigger is like an umbrella concept. और रिलीजन फिर कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है और इंड्यूस करती है एंड देन कल्चर इंड्यूसेस आर इन्फ्लुएंसेस हाउ वी डेवलप आर हाउ वी अकोमोडेट आवर ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेस सच एज एक्सपीरियंस ट्रेनिंग एजुकेशन एंड नॉलेज तो इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ व्हाट रोल हाउ दिस the first question was how these intangible human resources, human capital factors, in other words, human capital is created. I hope I explained this to some extent. And the second part of the question was what role these resources play for business success or sustained business success. Hamari jo analysis hai, उसमें यह है कि सिंस एथनिक माइनॉरिटी माइक्रो बिजनेसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट यॉर्कशायर मेनी ऑफ देम एक्चुअली फोकस ऑन देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस एंड दिस एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस इज मेड अप बाय पीपल हु लुक लाइक देम हु वेयर ड्रेस लाइक देम हु टॉक लाइक देम and who behave like them in most of the times. In other words, they focus on their own co-ethnic minority population base. And this is actually the core of their success. Therefore, these people do not want to expand as such their customer base. Not all of them, of course, some businesses successfully expand it and they become like international or multinational enterprises. That's fine. But most of them just want to keep their business focused on meeting the needs of their co-ethnic minority base. And this is how they sustain their success. So if that's the case, then they, of course, do not give importance to formal education or experience gained in other contexts. Or knowledge created in other context. So they just keep focusing on their co-ethnic minority base. However, there is a potential problem. ये सारी बातें दुरुस्त होंगी कि ये जो ethnic minority businesses जिनको हमने research किया, वो अपनी community पे ही focus करते हैं और वो अपनी community की ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं और यही उनकी कामयाबी का राज है अभी तक मोस्ट ऑफ देम आर सक्सेसफुल एंड होपफुली दे विल रिमेन सक्सेसफुल इन द नियर फ्यूचर लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फॉर हाउ लॉन्ग दे विल कीप डूइंग दिस अभी आपने देखा होगा कि जैसे एथनिक माइनॉरिटी लोग हैं यूके के अंदर वेस्ट यॉर्कशायर इज बेसिकली एज ए गुड प्रोपोर्शन ऑफ साउथ एशियन एथनिक माइनॉरिटी पीपल live in West Yorkshire, Leeds, Huddersfield, Bradford, Halifax, Dewsbury area. तो वो ज्यादातर तो आए 1960 में जब ब्रिटिश इकॉनमी बूमिंग कर रही थी आफ्टर द वॉर एंड 1950s एंड 60s देयर वर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ लेबर तो उन्होंने जो एक्स कॉलोनीज थी ब्रिटिश कॉलोनीज वहां से लोगों को अट्रैक्ट किया तो बहुत सारे कैरेबियन कंट्रीज से आए बहुत सारे इंडिया से आए पाकिस्तान से आए बांग्लादेश से आए यहां आबाद हुए फिर इनिशियली तो वो जाहिर है काम करने के लिए आए लेकिन इवेंचुअली दे ब्रॉट देयर फैमिलीज ओवर तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आफ्टर दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम रहा है वो ये है कि दे ऑलवेज वेंट बैक टू देयर होम कंट्रीज टू गेट देयर डॉटर्स एंड सन्स मैरिड तो वहाँ से फैमिली रीयूनियन उनका हस्बैंड आया वाइफ आई स्पाउस आए तो उनका इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी अब गवर्नमेंट ने कोई तकरीबन कोई 10 साल हो गए तो इससे पहले कोई कंडीशन ऐसे थी नहीं जो मिनिमम अर्निंग रिक्वायरमेंट जो स्पॉन्सर है उसकी तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट थ्रेशोल्ड सीलिंग इंट्रोड्यूस की कि जो भी कोई अपनी वाइफ या हस्बैंड को बुलाना चाहे वो कम से कम 18,600 उनकी पर अनम ग्रॉस वेज होनी चाहिए लोगों ने बहुत शोर किया लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने सुनी नहीं गवर्नमेंट का अपना एजेंडा होता है उनको अपनी पॉलिटिक्स खेलनी होती है for good reasons or for bad reasons so this is not our topic we're not going into that lekin log phir bhi family reunion hoti rahi log aate rahe husband bhi aaya wife bhi aayi abhi recently march 2024 mein isi saal government ne actually ye limit bada kar 29,000 kar diya to abhi sunne mein ye aaya hai कि मे बी इन ऑटम 2024 दिस मे बी इंक्रीज्ड टू समथिंग लाइक 37,000 एंड इवेंचुअली टू 39,000 अब आप सोचें कि 39,000 या इवन 29,000 जो इस वक्त जो कंडीशन है वो एक आम आदमी के बस की बात नहीं है वो एक टैक्सी ड्राइवर इतना नहीं कमाता है शो भी नहीं करता है और या एक आदमी जो चेकआउट में काम करता है या सिक्योरिटी की जॉब करता है या किसी कॉर्नर शॉप में मालिक है या काम करता है ऑलमोस्ट एनी ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट मीट दिस रिक्वायरमेंट यू हैव टू बी ए प्रोफेशनल यू हैव टू बी एक्चुअली सीनियर प्रोफेशनल टू मीट 39,000 डिमांड विद इन दिस ईयर आइदर यू कैन बी ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और यू कैन बी ए मेडिकल डॉक्टर और ए डेंटिस्ट or some sort of other highly qualified professional working in high position. So, aap ye andaaza karein ki government ne ek tarah se stop kar diya ki family reunion, spouse visa pe log nahi aa sakte. Lekin jab government ne ye stop kiya, usse pehle bhi ye realization thi, if you can remember, which I felt, and because I worked for 16 years as a human resource manager in Bombay Stores Group in Bradford. So I had some idea about that as well. Jo log, jo young generation hai, jo yahan ki second or third generation immigrants hain, ladke ya ladkiyan, wo khud bhi nahi chahte hain ki wo Pakistan se shaadi karke kisi ko le aayen. Uske bhi multiple factors hain. Ek to ye hai ki khaskar ladkiyan, jo hamari community ke ladkiyan hain, they superseded boys in education recently. So, wo to highly qualified, educated kisi ladke ke sath shaadi karna chahengi jo ke mushkil hai milna idhar is country mein milna mushkil hai pakistan mein bhi mushkil hai agar pakistan mein milta bhi hai koi highly qualified kisi ne MA BA BSc MA MSc kiya hai usko idhar leke bhi aate hain to uska human capital to yahan ke human yahan pe to uski value hi nahi hai क्योंकि अगर कोई पाकिस्तान से एमए करके आता है पास्ट में जो डिग्री थी अभी मेरे ख्याल पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम लास्ट फ्यू इयर्स चेंज होना स्टार्ट हुआ है एक तो यह प्रॉब्लम है दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उनकी जो मेंटल अप्रोच है वो मैच नहीं करती है तो कितने सारे लोगों को मैंने खुद भी ऐसा देखा है जो पाकिस्तान से शादी करते हैं हजारों पाउंड खर्च कर यहाँ ले आते हैं उनकी बनती नहीं है कुछ ही दिनों के बाद लड़का और लड़की के दरमियान में चाहे लड़की जहाँ की हो चाहे लड़का जहाँ का हो उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है तो कितने सारे लोग इससे गुजरे हैं फैमिलीज दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टाइम एंड एफर्ट एंड दे ब्रॉट समबडी ओवर द मैरिज डिड नॉट वर्क तो गवर्नमेंट ने ये जो सख्ती की है सपाउस बुलाने के चक्कर में तो लोगों को खुद भी ये था कि लोग शादी करना स्टॉप हो गए थे जब ये सिचुएशन रही तो फिर जो आपका एथनिक स्पेसिफिक ह्यूमन कैपिटल कहां से आएगा जो बिजनेसेस हैं वो ये कहते हैं कि हमें फॉर्मल एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मल इस कॉन्टेक्स्ट में इस यूके के कॉन्टेक्स्ट में जो एक्सपीरियंस या ह्यूमन कैपिटल डेवलप हुआ है दैट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस वी नीड ह्यूमन कैपिटल दैट हैज बीन अक्वायर्ड दैट हैज बीन डेवलप्ड दैट हैज बीन जनरेटेड विद आवर ओन एथनिक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट वो तो आपको लोग मिलेंगे नहीं जब वो लोग आपको नहीं मिलेंगे तो आपके बिजनेस के अंदर काम कौन करेगा तो आपका बिजनेस जो है ना कामयाब कैसे होगा तो देयरफॉर स्मॉल बिजनेसेस स्पेशली माइक्रो एथनिक माइनॉरिटी माइक्रो बिजनेसेस स्पेसिफिकली नीड टू थिंक अबाउट दिस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक ह्यूमन कैपिटल बिकॉज दे विल नॉट फाइंड आर इट विल बी वेरी हार्ड टू फाइंड context specific human capital if they want to survive and they want to sustain their success in the long term in the UK in West Yorkshire ye hamara bahut bada question hai policy makers ke liye bhi aur jo business community hai hamari jo Asian South Asian ethnic minority business community ke liye question hai aur ye question hai researchers ke liye bhi we all need to think about how we go about this Because end of the day, these ethnic minority micro businesses make significant contribution to the UK economy and UK employment generation. They cannot be and they must not be ignored. There must be a way forward, maybe training or maybe some sort of investment. Yeh mera topic tha aaj ka. With this topic, I will say goodbye to you until we meet again, same time, same day, next week.